अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसे हैं आप लोग? मुबारक हो आपको एक और दिन अल्लाह के दीन के लिए आना। अच्छा लग रहा ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे। और ये लफ्ज कहते हुए वो मानी जहन में रखने चाहिए कि मुबारक का मतलब क्या होता है, कि अल्लाह ताला आपके थोड़े में भी ज्यादा डाल दे और इसको और ज्यादा ऐसे और ही मौके आपको और दे अल्लाह ताला। खुशी के साथ अल्लाह ताला से जब नेमतें लेते जाते हैं, अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाता जाता है। ठीक है, चलिए, अब वक्त बहुत ही लिमिटेड है, आज हम बहुत एक शॉर्ट सा आपका वर्जन है, तो इसलिए अब बहुत सारी बातें नहीं होंगी। हम अपने लेसन पे डायरेक्ट चलते हैं। आप लोग सब हयात सहाबा के दरख्शां पहलू किताब खोलिए, पास रखिए, और इंशाल्लाह अभी आप मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे, मैं आपको उसके इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। आज हयात सहाबा के दरख्शां पहलू किताब के सिलसिले में से हम पहले सहाबी की कहानी शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर बताती हूँ ताकि आप सब मेरे साथ साथ देखेंगे, और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस जो आप सबको फ़ायदा देंगी इसको सीखने के लिए। तो किताब बकायदा आज शुरू करते हैं। इसका तरीका यही होगा कि हर सहाबी को हम उनकी जो तरतीब है उसी को सामने रखते हुए बात करेंगे। असल में ये स्टोरी टाइम है, लेकिन स्टोरीज तारीख की और उन किरदारों की कि जिन्होंने इस्लाम की तारीख रकम की। किताब का नाम चूंकि आपको मालूम है कि हयात सहाबा के दरख्शां पहलू है, थोड़ा सा एक चीज कहूंगी कि कुछ लफ्ज शायद उर्दू के एतबार से आपको मुश्किल लगे, तो उसके लिए जब मैं आपके सामने रीड करूंगी और या बाद में फिर आप खुद रीड किया करेंगे घर में, तो उसमें आप मुश्किल लफ्जों को स्किप भी कर सकते हैं और उसका ऑल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू की क्लास नहीं, उर्दू की बारीकियां बात करने की जरूरत नहीं, और स्टोरी में मजा कब आता है जब फ्लुएंट हो। तो जब मैं पढ़ूंगी तो आप देखिएगा कि मुश्किल लफ्जों को मैं खुद ब खुद कुछ ना कुछ चेंज कर दूंगी आपके लिए, और ये असल में आपको सिखाना मकसूद है कि बाद में जब आप खुद अकेले में इस किताब को पढ़ेंगे, घर में बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जब इस किसी भी तरह से, तो आप भी इसी अंदाज से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बात कह दूं कि जो भी सुन रहे हैं और अगर उनके पास फिलहाल बुक नहीं है, नहीं पहुंची या कोई रीजन थी, तो फिलहाल आज के लिए वो यही करेंगे कि अपने सामने नोटबुक खोलें और जो बातें आपको लगें कि आपको याद करनी है, रखनी है, हर सहाबी के नाते से टाइटल ऊपर बना लें और वो लिखते जाएं, क्योंकि बाद में जब आप असाइनमेंट करेंगे इस बुक का तो वो एक किस्म की हैंडबुक आपके हाथ में होगी, अदरवाइज फिर आपको पूरी बुक दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सफ़ा नंबर 15 है, और आज के पहले मुस्लिम हीरो जिनका हम जिक्र इस किताब के नाते से देखेंगे वो हैं हज़रत सईद बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु। और इनके बारे में जो मशहूर जुमला है वो क्या है कि हज़रत सईद बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु ने दुनिया के बदले आखरत का सौदा किया। अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ पर मुकद्दम जाना। हज़रत सईद बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हो उन हजारों जवानों में से थे जो कुरैश के सरदारों की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा के ऊपर की तरफ तनीम के मुकाम की तरफ महज इसलिए चल खड़े हुए ताकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुबैब बिन अदी की शहादत का मंजर अपनी आंखों से देख सके रदियल्लाहु अन्हो, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। यहाँ असल में वो वाक्या है, अगर आपके पास बुक है तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट इसका आर्टिकल है, आप देखेंगे कि पूरे आर्टिकल्स के बाद दायरों की सूरत में कुछ नई बात शुरू होती है, तो जहां तक एक दायरा है वो एक टॉपिक है। मैं आपको साथ साथ टॉपिक भी इंशाल्लाह ताला इनके लिखाऊंगी, और ये टॉपिक कौन सा है, सईद बिन आमिर का इस्लाम की तरफ पहला कदम। हकीकत में यहाँ वो मोटिव बयान हुआ है कि जिसकी वजह से सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई। और ये खुद अपने आप को उस बात को बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम के एक और सहाबी थे हुबैब बिन अदी, जिनको कुफारे मक्का ने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। ना सिर्फ ये कि कत्ल किया बल्कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, और जुल्म की ये कहानी दिखाने के लिए उन्होंने लोगों को सरेआम दावत दी थी कि आओ देखो हमारे नजरियात से इख्तलाफ करने वालों को हम सजा कैसी देते हैं, हम उनको दुनिया में ही इस तरह की मिसाल बना के पेश करेंगे कि लोग फिर इस चीज की तरफ आने की हिम्मत भी ना करें। वही धमकी कल थी, यही धमकी आज है, और कुर्बानियां देने वाले कल ज्यादा थे आज थोड़े हैं। असूलों पे समझौते करने वाले आज ज्यादा होंगे, उस दौर में वो असूल नहीं छोड़ते थे, जान छोड़ देते थे। तो उन्हीं में से एक सहाबी थे हजरत हुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हो। तो उनकी शहादत का वाक्या है पहले पोर्शन में, जिसको सईद बिन आमिर दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ देख रहे हैं, लेकिन यही शहादत असल में हुबैब की तो शहादत बन गई, लेकिन सईद बिन आमिर के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई। अब कहते हैं कि मैं हुबैब की शहादत का मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, कुरैश ने जिनको पकड़ा, इनकी जवानी ने इसे इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधों से ऊपर गुजरता हुआ अबू सुफयान बिन हर्ब और सुफवान बिन उमैया जैसे सरदाराने कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहां इन दोनों के सिवा और भी अरब के शख्स सवार थे जो अगली सफों में बैठे हुए थे। यानी ये कहते हैं कि मैं जवान था, जिसम ताकत अच्छी थी, तो मैं उस मंजर को देखने के लिए आगे से आगे चला गया, सफों को फलांगता हुआ सबसे आगे चला गया ताकि मंजर अच्छी तरह नजर आए। और ये उस वक्त कुफर पे थे। उसे ये मौका इस तरह मिला कि कुरैश के इस कैदी को अपनी आंखों से देख सकें। इसने इस मंजर का मुशाहिदा किया कि औरतें बच्चे और जवान सब इसे मौत की वादी की तरफ बेदरेक धकेल रहे हैं। इनका मकसद ये था कि वो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूं बदर के कत्ल किए हुए लोगों की रुसवाई का बदला चुकाएं। यहाँ ये चीज ऐड करवा दूं कि हुबैब का कत्ल जो था वो गजवे बदर मार्के के बाद हुआ, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को जोश आ चुका था कि इन्होंने हमारे 70 सरदारों को हलाक किया, तो लिहाजा उन्होंने एक किस्म की जुल्म की कहानी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हुबैब बिन अदी थे, तो उनके कत्ल की कोशिश जो है तो उसका ये मंजर है। कहते हैं जब लोगों का जो रश था अपने इस कैदी हजरत हुबैब को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा जो पहले से ही इसकी शहादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, तो इस मरहले पर लंबे चौड़े यानी लंबे कद वाले सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो की तरफ नजर दौड़ाई। कुरैश के सरदार उसे तख्तेदार की तरफ ले जा रहे थे, यानी जहां उनको फिर सूली पे चढ़ाया जाएगा। उसने बच्चों औरतों की चीखों पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज सुनी। हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ लेने की मोहलत दो। गौर कीजिएगा आप भी, अल्लाह के रास्ते में जान जा रही है, शहादत का मर्तबा मिल रहा है, क्या यही नेकी काफी नहीं थी जन्नत पाने के लिए? लेकिन नहीं, वो लोग जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में अटे होते हैं वो एक नेकी करके उसी को काफी नहीं समझते, वो उससे अगले ही मरहले पे जाने की कोशिश करते हैं। हुबैब सूली पे चढ़ने से पहले एक दरख्वास्त करते हैं, और वो क्या है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। और फिर सईद बिन आमिर ने देखा कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो जितनी दफा इन सहाबियों का नाम आए दिल की गहराइयों से कहा करे रजी अल्लाह अन्हो कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, किबले की तरफ मुंह करके खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकतें कैसी थी, इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल कि क्या कहने। कि इसके बाद इसने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुंह करके हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो ये कह रहे हैं, बखुदा, अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा न होता कि तुम कहीं ये न समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से लंबा कर दिया, तो मैं नमाज में और वक्त सर्फ करता, यानी और ज्यादा वक्त गुजारता। फिर उन्होंने कुरैश के सरदारों को अपनी आंखों से देखा कि वो हजरत हुबैब रदी अल्लाह अन्हो का जिंदा हालत में मुजला कर रहे हैं, यानी ये लोग इनके जिस्म का एक एक उज्व एक के बाद एक काट रहे हैं, और साथ साथ ये कहते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम इस तकलीफ से बच जाओ। इनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे, जवाब ये था, अल्लाह की कसम मुझे कतन ये बात पसंद नहीं कि मैं अपने अहलोयाल में अमन और चैन से रहूं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर ने देखा कि लोग फिजा में हाथ हिला हिला कर बुलंद आवाज से ये कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हजरत हुबैब रदी अल्लाहु अन्हो को देखा कि वो तख्ते दार पर अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से इल्तजा कर रहे हैं, इलाही इन सब जालिमों को शुमार कर, यानी इनको गिन ले और इन्हें तबाही का मजा चिखा और इनमें से किसी को माफ ना कर। ये कहकर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब इनका जिस्म तलवारों और नेजों की जरबों से चूर हो चुका था और इतने जख्म खा चुका था कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। मैं और आप, हम सब अपने ईमान का जायजा लें। सईद बिन आमिर की बात तो बाद में देखेंगे, हुबैब का ईमान कैसा प्यारा है कि मुझे तकलीफ आ जाए लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी न चुभे और इस वजह से जिंदा जिस्म कट रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, वो कौन सा दिन था जब हमें इस्लाम के लिए आखिरी बार चोट पड़ी? वो कौन सा दिन था जब हमें इस्लाम की वजह से किसी ने ताना दिया? वो कौन सा दिन था जब इस्लाम की वजह से लोगों ने हमारी दुनिया जीरन कर दी? कोई भी तो नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन पेश कर सके कि अल्लाह, ये तेरे रास्ते में छोड़ के आई हूँ, ये कटा के आई हूँ। ये सहाबे कराम क्यों इनको रदी अल्लाहु अन्हु का टाइटल मिला? क्योंकि वाकई इन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी कर दिया। इनकी जिंदगियां रब की रजा वाली थी और इनकी मौतें भी रब की रजा वाली थी। और इस मंजर ने अब सईद बिन आमिर के दिल को पखिला दिया। अगला हिस्सा शुरू होता है इस चैप्टर का। इसका टॉपिक आप लिख सकते हैं, और इस्लाम सईद बिन आमिर के दिल में था ही अब जुबान पे आ गया। मुख्तसर कह सकते हैं, और इस्लाम जुबान पे आ गया। कुरैश भी लाखर मक्का वापस लौट गए, यानी हुबैब को तकलीफ देने के बाद अब वापस गए और इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े संगीन मारकों के नरगे में हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो और इनके वाकियात शहादत को बिल्कुल भुला गए। यानी उसके बाद उन्होंने और भी लोगों के साथ ऐसी जुल्म की कहानियां की कि लोगों को हुबैब की शहादत भूल गई। लेकिन इस नौजवान सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल के पर्दे पर एक लम्हे के लिए भी हजरत हुबैब की शहादत का मंजर महव ना हो सका। चुनाचे जब भी सोते, ख्वाब में ये मंजर बराबर दिखाई देता और बेदार होते तो ख्याल की आंख से यूं देखते कि जैसे हुबैब सूली के तख्ते पर चढ़े हैं और पूरे इत्मीनान के साथ दो रकत नमाज अदा कर रहे हैं, वही जो उन्होंने उससे शहादत से पहले पढ़ी थी। यही नहीं बल्कि इनकी पुरदर्द आवाज जैसे इनके कानों में गूंज रही है और वो कुरैश के खिलाफ बददुआ में मसरूफ हैं, और इस ख्याल से इनका कलेजा दहल जाता कि कहीं आसमान का कड़का इनको ना ले और आसमान से पत्थर गिरकर इनको तबाह न कर दे। हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो ने जामे शहादत नोश करके जनाब सईद रजी अल्लाह अन्हो को वो सब कुछ सिखा दिया जिसका इन्हें पहले कतई इल्म न था। क्या सिखाया? ये सिखाया, इन्हें सिखाया कि हकीकी जिंदगी अकीदा और अकीदे की राह में तादमे आखिर मुसलसल जिहाद का नाम है। दोबारा बोलूंगी ताकि हम भी अपने ईमान को चेक करें और हम भी देखें क्या हमने भी ये बात सीखी कि नहीं, क्या कि असल जिंदगी अकीदा और अकीदे की राह में आखिरी दम तक मुसलसल जिहाद करने का नाम है। अल्लाह अकबर, हमें तो अकीदे की कोई बात मालूम ही नहीं, हम उसके तकाजे कैसे पूरे करेंगे? हमें तो पढ़ना मुश्किल लगता है, हमें तो सुनना मुश्किल लगता है, लेकिन उनका हाल देखिए कि इसके नाम पे जिंदगियां कुर्बान करने वाले, क्योंकि उनको पता था कि बंदे मोमिन की जिंदगी आखिरी दम तक जिहाद का नाम है। आराम नहीं है उसकी जिंदगी में, वो तो एक ही जगह आएगी जहां वो सुकून और आराम से रहेगा। ये दुनिया काम का वक्त है, आराम का वक्त नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने इस वाक्य से सीखी और हमें भी सीखनी है इंशाल्लाह, वो ये थी कि पुख्ता और मुहकम ईमान, यानी पुख्ता ईमान ऐसे अजीबोगरीब किरदारों को जन्म दे सकता है जो आम हालात में सामने नहीं आते। क्या बात हुई कि जब इंसान का ईमान पुख्ता होता है ना, तो उसकी वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसकी वो करेक्टर बिल्डिंग होती है जो आम हालात में नहीं होती। क्या आपने नहीं कभी देखा, आम हालात में आप बड़े नाजुक बने फिरते हैं, लेकिन जो ही कोई मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान फिर गिरने वाला नहीं, थामने वाला बन जाता है। नाजुक अंदाम लड़कियां जिनके नाज और नखरे बहुत होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा आ जाता है जिंदगी में, शोहर चला गया, बच्चे पालने पड़ गए, तो आप देखिए कि वही लड़कियां कितनी मजबूत हो जाती हैं। और हकीकत भी यही है कि मुसीबतें हमारे अंदर की खैर को बाहर लेके आती हैं। जैसे आतिशफिशां फटते हैं तो उनके फटने से जमीन अपने खजाने कभी कभी उगल देती है। लोगों को खबर भी ना होती कि इस जमीन में इतने खजाने हैं, लेकिन आतिशफिशां उसको खोल के रख देता है। तो लिहाजा अल्लाह के रास्ते में जब कोई मुश्किल आए, अल्लाह के रास्ते में जब कोई आजमाइश आए, तो फौरन ही देखना है कि क्या मैंने इस आजमाइश से कुछ सीखा, क्या वाकई मेरी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई इस चीज से, और मैंने वो चीज सीख ली जो मुझे इस मुसीबत में डालने से सिखाना मकसूद थी। इसके अलावा उन्हें इस हकीकत का भी एहसास हुआ कि वो शख्स जिससे उसके दोस्त इस दर्जे मोहब्बत रखते हैं कि इस पर जान निछावर कर दे, बिलाशुबा अल्लाह का सच्चा रसूल है, जिसकी हिमायत के सामान आसमान की तरफ से मुहैया होते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लम से सहाबा कराम की मोहब्बत भी देख ली कि कैसे आप पे जद नहीं आई और अपनी जान कटवा दी। आज हम अपने दिल को चेक करें, क्या मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लम के लिए ऐसी ही मोहब्बत है? क्या आज उनके बारे में कोई गलत बात कह दे तो क्या मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी उस दौर के लोगों को होती थी? क्या आज हम अल्लाह के नबी सल्लम के तरीकों पे अमल करके ही लोगों की नजरों में ऊंचा बनना या उसकी उनकी नजरों से गिरना इन्हीं जज्बात और इन्हीं कोशिशों के अंदर मुलविस नहीं रहते? हम सबको अपने ईमान का जायजा लेना है, क्योंकि देखिए ईमान बीज की तरह है, जब बीज मजबूत होता है तो पौधे भी उगते हैं, अमल के पौधे बीजों पे लगते हैं, ईमान कमजोर है तो बात नहीं बनेगी। आज ईमान क्यों नहीं कम, आज ईमान तो है लेकिन कमजोर है, इसलिए पौधे नहीं उगते, फल नहीं लगते, वो फसल आज नहीं तैयार हो रही मुसलमानों की जो मकसूद थी। दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ सिमट कर उनकी हैबत से राई। ये वो लोग थे जिनके लिए अलामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह के नबी से सल्लम के साथी हैं। एक सच्चा मोमिन कहीं आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द की जमीन में इर्तयाश आने लगता है। आज हम इतने होने के बावजूद इर्तयाश तो छोड़िए, हल्की सी जुम्बश भी अपने इर्द गिर्द पैदा नहीं करते। क्यों? कि आज हमारे अंदर वो ईमान नहीं, आज वो कुर्बानी का जज्बा नहीं। और यही बात थी जिसको सीख के फिर सईद बिन आमिर का सीना इस्लाम के लिए खुल गया। सारे मजमे के सामने उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि मैं बुत परस्तों की आलाइशों यानी गंदगियों से पाक होकर और बेख्तियार बुतों से मुंह मोड़कर एक अल्लाह के आगे सरे तस्लीमे खम करता हूँ, यानी मैं आज से मुसलमान हूँ। अल्लाह अकबर, क्या हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा? एक कत्ल होता देख के, एक जुल्म होता देख के सईद बिन आमिर का सीना खुल गया। आज भी इस्लाम के नाम पे कत्ल मौजूद है, आज भी ऐसी वहशतनाक तस्वीरें सरेआम दिखाई जाती हैं। क्या ये तस्वीरें हमें रिवायती मुसलमान से शौरी मुसलमान में बदलती हैं? हम खबरें भी सुनते हैं, हम ऐलानात भी सुनते हैं, लेकिन नई बात बनती, यहाँ से एक और बात भी पता चलती है। हम नहीं जानते आज के दौर में भी जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, न जाने किस किस जुल्म को देखने के बाद उनके सीने खुल रहे हैं। यहाँ से एक और बात भी मालूम होती है, वो नोट कीजिएगा कि अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है। हुबैब की मौत शर लगी, लेकिन सईद बिन आमिर को जिंदगी मिल गई, इस्लाम की जिंदगी मिल गई। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या कि बाज दफा इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरे किस अमल से खैर कहाँ तक जाएगी। जब खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत हो रही थी, उन्होंने तो ये सोचा भी ना था कि मेरा ये दुनिया से जाना और मेरी ये इस्तकामत किसी के दिल में ईमान डाल देगी। वो दुनिया से चले गए और सईद बिन आमिर का सदका जारिया छोड़ गए, जिनके लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, कोई तबलीग नहीं की, लेकिन एक अच्छा अमल दूसरे को इस्लाम की तरफ ले आता है। इससे एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या कि जब कुर्बानियां देने वाले थोड़े से ही लोग क्यों ना मौजूद हों, लेकिन उनकी मौजूदगी दूसरों को इस्लाम के रास्ते में जमाने के लिए काफी होती है। हम सबको अपने लिए अमल मुंतखब करना है, हक हो तो हक का साथ देना है, बातिल है बातिल को नहीं मानना। इस्लाम के रास्ते में, अल्लाह के दीन के रास्ते में जहां कुर्बानियों की नौबत आए पीछे नहीं हटना। ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं अब हम मजबूर हैं, नहीं, आला दर्जे अख्तियार करने हैं, अतना पे नहीं जाना, रुख्सतों को कबूल नहीं करना, अजीमत के रास्तों पे चलना है। यहाँ आप देखा कि सईद बिन आमिर मुसलमान हो गए। अब अगला हिस्सा जो है इसको देखते हैं कि पढ़ते हैं, और इसके बाद आपको टाइटल दूंगी ताकि फिर आप भी उस फहम को महसूस कर सकें। सईद बिन आमिर रضي अल्लाह अन्हु ने मक्का में सकूनत तर्क कर दी और मदीना की जानिब हिजरत की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और सोहबत में रहने लगे। खैबर और इसके बाद होने वाले गजवात में शिरकत का शर्फ हासिल किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के जवारे रहमत की तरफ कूच किया, यानी आपका इंतकाल हो गया, उस वक्त सईद बिन आमिर से इनकी खिदमत की वजह से आप बहुत खुश थे। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में सईद बिन आमिर बरहना शमशीर बनकर रहे, यानी तलवार की तरह बने, और ऐसी जिंदगी बसर की जो मुसलमानों के लिए किरदार का नादिर नमूना साबित हुई, जिन्होंने दुनिया को बेचकर आखिरत का सौदा किया और अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में राजेख और मुकद्दम जाना। इस हिस्से का उन्वान क्या है? और तरजीहात बदल गई। जब दिल बदला तो तरजीहात बदल गई। कुर्बानी देना आसान हुआ, हिजरत करना आसान हुआ। जो चीजें पांव पकड़ती हैं दुनिया की, वो चीजें हट गईं और सईद बिन आमिर का नसीब बदल गया, और वो मक्का से मदीना आ गए, क्योंकि मदीना में नबी सल्लम एक साथ हुकूमत कायम कर चुके थे। गौर कीजिए कैसे दिल बदलते हैं तो तरजीहात बदल जाती हैं, दोस्तियां बदलने लगती हैं, साथ बदलने लगते हैं, और नतीजा क्या होता है कि लोग फिर हकीकत में उस चीज को दिल की खुशी बना लेते हैं जो एक वक्त में उनके लिए नाराजगी का सबब होती थी, और वो उस चीज को यानी अपनी खुशी बना लेते हैं जो अल्लाह की खुशी होती है। ये मदीना में आते हैं और वहां फिर आप देखिए जौहर दिखाते हैं अल्लाह के नबी सल्लम, फिर अबू बकर, फिर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर। इनको कुर्बानियां देने और अपनी जुर्रत और अपनी बहादुरी दिखाने का एक जरिया बना, और ये फिर लोगों के लिए नफामंद हो गए। हमने इसे क्या सीखा कि जब इंसान की सोच बदलती है तो उसका अमल भी बदलने लगता है। अगर आज तक हम कोई अपना काम करना चाहते थे और कर नहीं चुके, सोच नहीं बदली, तो इसकी वजह क्या है कि अभी तब्दीली अंदर नहीं आई। हम भी हिजरतें करवाना चाहते हैं, हम भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां करके उन चीजों को कबूल करना चाहते हैं जो हमारी आखिरत के लिए बेहतर हों, लेकिन हम क्यों नहीं कहते? इसलिए कि अभी सोच नहीं बदली। अगर अपनी औलादों का फिक्र है तो उनकी सोच बदल दीजिए, फिर देखिए कि अमल कैसे आते हैं। फिर आप उनको कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन वो अपनी जिंदगी के रास्ते इस्लाम की तरफ खुद बखुद गामजन करते ही रहेंगे। आगे देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों खलीफा यानी अबू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो की सदाकत और तकवा को खूब जानते थे, लिहाजा इनकी नसीहतों को गौर से सुनते और इनकी हर बात पर कान धरते। सईद बिन आमिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास इस वक्त तशरीफ लाए जबकि वो खलीफा बन चुके थे। आपने फरमाया, ए उमर रजी अल्लाह अन्हो, मैं तुम्हें इस बात की वसीयत करता हूँ कि लोगों के मामले में अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह ताला के बारे में लोगों से कभी ना डरना, और ये कि तुम्हारे कौल और फेल में कभी तजाद ना हो, इसलिए कि इंसान की बेहतरीन गुफ्तार यानी बात वही होती है जिसकी तस्दीक इसका किरदार करे। ए उमर, अल्लाह सुबहाना ताला ने जिन मुसलमानों का तुम्हें निगरान बनाया है इनके मामलात की तरफ खसूसी ध्यान देते रहना, इनके लिए वही पसंद करना जो तुम्हें अपने और अपनी औलाद के लिए पसंद हो, और इनके लिए हर उस चीज को नापसंदीदगी के नजर से देखना जो खुद तुम्हें अपनी जात और अपने अहलो याल के लिए नापसंद हो। मुश्किलात का सामना करने से ना घबराना और हक के रास्ते पर मजबूती से जमे रहना, और हक के रास्ते में कभी भी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में न लाना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सईद, भला किसमें ये हिम्मत है कि इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सके यानी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सके जो खिलाफत की सूरत में मेरे ऊपर डाल दी गई। सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप इसके अहल हैं, आप इन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी का फरीजा सौंपा। आप एक ऐसे शख्स हैं कि अल्लाह के हाँ आपसे ज्यादा और कोई इसका मुस्तहिक नहीं। तो ये हिस्सा, इसका उन्वान क्या है? हक बतवासो बिल हक। यहां आप देखते हैं कि सईद बिन आमिर तवासो बिल हक करते हुए दिख रहे हैं। इमाम वक्त हुक्मरान उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के जिनकी गैरत और जिनकी ईमान की कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आप देखिए कि हक बात कहते हुए हजरत सईद बिन आमिर जो है ये इनको कैसी अच्छी नसीहतें करते हैं। अल्लाह करे आज भी कोई ऐसा सईद आ जाए कि आज के हुक्मरानों के सामने यही खूबसूरत कलिमात बोल सके। यहां से हमें क्या मालूम होता है कि उस दौर में कितनी आजादी थी। एक शख्स जो हुक्मरानी के लिए मुंतखब होता है, आम दर्जे का जो शहरी है वो भी उनको नसीहत कर सकता है। उमर फारूक ने नहीं कहा कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे बात करते हो, तुमने मुझे क्या समझा। और ऐसे ही लोग, याद रखिए, फायदा उठाते हैं किसी भी चीज से जो अपने कानों को नसीहत से बंद नहीं कर लेते। और वो लोग जो अपने आप को हरफन मौला समझते हुए गलतियों से पाक समझें और जिनके अंदर औनत इतनी आ जाए कि उनकी बात के अंदाज से भी पता चल जाए कि वो अपने दिल में क्या सोचे बैठे हैं, तो ऐसे लोग फिर याद रखिए कि बहुत ज्यादा दिन तक दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आते। इस मरहले पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जनाबे सईद रजी अल्लाह अन्हो को अपनी नुसरत और ताईद के लिए दावत दी और फरमाया, ए सईद, हम तुम्हें इलाका खिम्स का गवर्नर बनाते हैं। ये खिम्स भी या खिम्स या खमिस दोनों तरह से हो सकता है, एक इलाका था। उन्होंने इसके जवाब में कहा, ए उमर रजी अल्लाह अन्हो, अल्लाह का वास्ता है मुझे इस आजमाइश में न डालिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने इस पर खफा होकर फरमाया, बड़े अफसोस की बात है कि तुमने खिलाफत का बोझ तन्हा मेरी गर्दन पर डाल दिया और खुद इससे अलग थलग होने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह की कसम मैं छोड़ने वाला नहीं। इसके बाद आपने इनको सूबा खम्स का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और इरशाद फरमाया, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा मुकर्रर ना कर दें यानी कुछ पे दें तुम्हें इस काम की। इस पर सईद रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुआवजा लेकर क्या करूंगा। बैतुल माल से जो कुछ मुझे मिलता है वो भी मेरी जरूरत से ज्यादा है। और ये कहा और खम्स की तरफ चल पड़े। कुछ अरसे के बाद वहां रहने वालों में से काबिल एतमाद अफराद पर मुश्तमिल एक वफद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उस वफद यानी ग्रुप जो था उसको हुक्म दिया, तुम लोग मुझे इन लोग अफराद के नाम लिख कर दो जो तुम में से मुफलिस और नादार हैं, ताकि मैं इनकी माली मदद कर सकूं। वफद ने आपकी खिदमत में एक लिस्ट पेश की। क्या देखते हैं कि इस फहरिस्त में, यानी इस लिस्ट में सईद बिन आमिर रضي अल्लाह अन्हु का नाम भी दर्ज है। आपने फरमाया, क्या कौन सईद बिन आमिर? उन्होंने कहा, जी हमारा गवर्नर। फरमाया, क्या आपका गवर्नर मुफलिस है? उन्होंने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम, कई कई दिन इनके चूल्हे में आग नहीं जलती। ये सुनना था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बेख्तियार रो पड़े और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, और आप उठे और 1,000 दीनार दिए और इनको एक थैली में भरकर फरमाया, इससे मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि अमीरुल मोमिनीन ने ये थैली तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम इससे अपनी जरूरियात को पूरा कर सको। ये वफ़ाद सईद बिन आमिर के हाथ थैली लेकर आया। आपने देखा कि इसमें तो दीनार हैं। थैली को अपने से दूर हटाकर बस ये कहने लगे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया के कोई मुसीबत नाजिल हो गई या कोई नागवार वाकया पेश आ गया। ये कैफियत देखकर आपकी बीवी घबराई हुई उठी और कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या कोई सानहा रूनमा हो गया? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? यानी आपने जो इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो शायद किसी की वफात की खबर आपको मिली। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि बात इससे भी ज्यादा अहम हो गई। फिर बीवी ने पूछा, क्या किसी मारकए जिहाद में मुसलमानों को कोई सदमा पहुंचे? आपने फरमाया, इससे भी बड़ी बात हो गई। इसने अर्ज किया, भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फरमाया, मेरे हाँ दुनिया आ गई ताकि मेरी आखरत को बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया। उसने अर्ज की, क्यों ना आप इस फितने से जान छुड़ा लें? उस बीवी को अभी तक दीनारों के बारे में कुछ इल्म न था। उन्होंने फरमाया, क्या तो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगी? फरमाया, हाँ क्यों नहीं। और आपने दीनार कई थैलियों में बंद किए और गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिए। रदी अल्लाहु अन। गौर कीजिएगा, कैसा किरदार है। हुकूमत मिल चुकी, गवर्नर है कि गवर्नर के घर में चूल्हा नहीं जलता। इस हिस्से का यही टॉपिक लिखेंगे, गवर्नर के घर चूल्हा नहीं जलता। आपको समझ आ रहा होगा कि इस्लाम ने इतनी तरक्की क्यों की और आज हमारी पस्तियों की वजह क्या है। कितनी ही बातें हैं इस हिस्से से जो हम ले सकते हैं। पहली बात आप देखिए कि जब उनको गवर्नरी मिली तो कहते हैं ये आजमाइश है। क्या आज भी ऐसा ही है? उन्होंने तो कोई फतह का जश्न नहीं मनाया, उन्होंने तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया ताकि पता चल जाए लोगों को कि आज हम इलेक्ट हो गए, आज हमारे यहाँ क्या होता है। फिर आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरासत भी समझ आती है कि उन्होंने इनके तकवा और जोहद की वजह से इनको एक इलाके का गवर्नर मुकर्रर किया। इससे क्या पता चलता है कि किसी मुसलमान मुल्क के हुक्मरान जो चुने जाएं तो उसकी बुनियाद उनका तकवा हो, उनका जोहद हो, अल्लाह से मोहब्बत की बात हो। फिर आप इससे एक और चीज अखज कर सकते हैं, और वो क्या है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेहतरीन लीडरशिप, कि आप हुक्मरान बन के अपने आप को बंद कमरों में या बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं महफूज करते थे बल्कि अपने मुआशरे की खबर रखते थे। कहा कि मुझे उस मुआशरे के गरीब लोगों की खबर दो। आज के हालात में अगर हम इसको देखें तो आप देखिए कि क्या होता है। गरीब बेचारे लाइनों में लगे होते हैं कि हमें कुछ मदद दी जाए, वो अपनी अर्जियां पेश करते हैं और हुक्मरान सुनने को तैयार नहीं। लेकिन उमर फारूक खुद लिस्टें बनवाया करते थे कि कौन जरूरतमंद है। बेहतरीन मैनेजमेंट है, कोई शख्स किसी मैनेजिंग ओहदे पे मौजूद है तो उसको अपने लोगों की नजर रखनी चाहिए, कौन वीक है, किसको कहाँ जरूरत है, ताकि फिर उनकी मदद की जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि लोगों ने हजरत सईद बिन आमिर जो है उनकी खबर दी कि हमारा गवर्नर मुफलिस है। इससे क्या पता चलता है कि मुफलिसी हद को बढ़ी हुई थी, कि आम लोगों तक खुल गई उनकी बात कि घरों में चूल्हे नहीं जलते। फिर उसके बाद देखिए कि सईद बिन आमिर ने जब थैली को देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब पढ़ते हैं? जब कोई सदमा आता है। पूछिए अपने आप से, जब मुझे दुनिया की कोई नेमत मिले तो मेरा क्या कलमा होता है? हाय हुर्रा, वाओ, व्हाट, क्या सवाल लिखिए अपने लिए दर एक। अगर मुझे 1,000 दीनार मिल जाए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? और ऐसे तो अचानक लॉटरियों में निकलते हैं या ऐसी ही चीजों में जिसकी उम्मीद नहीं होती, तो उस वक्त हमारा हाल क्या होता है? फिर जरा गौर कीजिए कि बीवी की फरासत तो देखिए, जब कहा सदमा बहुत तकलीफ हालत हो गई तो क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए। यानी उनको पता था कि अमीरुल मोमिनीन जो मुसलमानों का हुक्मरान है, उसकी वफात इतना बड़ा सदमा हो सकती है। उसने कोई अपनी जाती बात नहीं की, अपने खानदान के किसी शख्स का नाम नहीं लिया। फिर दूसरी देखिए, जब उन्होंने कहा इससे भी बड़ी बात हो गई, तो फिर बीवी ने क्या कहा? अच्छा, फिर मुसलमानों को कहीं नुकसान पहुंचा? इससे क्या पता चलता है? उस दौर की औरतों की फरासत भी कितनी थी, उनके दिलों और दिमागों पे भी इस्लाम छाया हुआ था। मैं आपको सबको एक यानी एक्टिविटी दे सकती हूँ कि खुदा न खास्ता अगर हमें कोई ऐसी खबर मिले कि कोई बहुत खराब हालात हो गए या मुश्किल हो गई, तो कोई आपसे कहे, फोन करे आपको और कहे कि बहुत बुरी खबर है, सच्ची बताइएगा कि पहले जहन में क्या आएगा, फौरन क्या आता है? कोई कह दे, खुदा ना खास्ता किसी का शौहर ही घर में आए और कह दे कि बहुत बुरी खबर है, क्या कहेंगे? एक लम्हे के लिए क्या आता है? दिल बैठने लगता है ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम, एक्सीडेंट है, कोई माल की बात आ जाएगी, कोई नुकसान हो गया, बच्चों की तरफ ख्याल जाएगा, डेथ हो गई, जॉब प्रॉब्लम है, ले ऑफ हो गए, क्योंकि हम अमूमन इन्हीं चीजों के अंदर तो परेशान होते हैं। कोई एक भी ऐसा हो, इल्ला माशाल्लाह, कि जिसके लिए जिसकी नजर मुसलमानों के मुस्तकबिल पे चली जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्लाम की वो फिक्र लग जाए जो हमें अपनी जात की फिक्र है। हम तो घर बैठ के खबरें सुनते हैं, वो खबरें जो उनके लिए एक धमाके से ज्यादा नहीं हो सकती थी, हमारे लिए तो वो रोज का मामूल बन गया। और साथ खबरें सुनते हैं और साथ खाते पीते रहते हैं, साथ ऐश करते रहते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह उन पर रहम करे। हम तो अपने हाल में मगन है, तो अल्लाह ताला हमें एक उम्मत बना दे, उम्मत बन के जिए। फिर आप देखिए कि बीवी ने जब ये बात कही कि आप इस चीज से जान छुड़ा लें, जो भी मुश्किल आ गई है, तो कहा तुम मदद करोगी, तो कहा क्यों नहीं करूंगी, और फिर दीनार बटे। उस वक्त क्या उस बीवी के दिल में नहीं आया होगा कि क्या आज हमारे चूल्हे में आग नहीं जल सकती? लिखिए अपने लिए, अगर मैं सईद बिन आमिर की बीवी की जगह होती तो मेरा रद्द अमल क्या होता? क्या मैं ऐसे लम्हे में अपने शोहर की मदद करती या कहती कि चलो ठीक है, अब चीज आ गई है तो ले लो, शुक्र करो अल्लाह ने भेज दी? नहीं, वही बीवियां थीं कि जिन्होंने शोहरों को दीन के रास्ते में मदद की। और फिर एक और वाक्या, इस वाक्य को ज्यादा अरसा न गुजरा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ लाए। मकसद ये था कि इस इलाके के हालात मालूम कर सकें। इन दिनों खम्स का नाम कुवैफा पड़ चुका था, जो लफ्ज कूफा की तस्गीर है। तस्गीर कहते हैं किसी चीज को छोटा करना, और अरब में ये काम रिवाज है कि जो लफ्ज होता है उसको छोटा कर दिया जाता है। ये इस नाम से इसलिए मशहूर हो गया कि यहाँ के लोग उमाले हुकूमत, उमाले हुकूमत कौन होते हैं? जो माल हासिल करने जाते हैं, जैसे ज़कात का माल जमा करने के लिए हुकूमत भेजा करती थी उन दिनों में लोगों को, जैसे मनी कलेक्टर्स जो लोग होते हैं वो, तो इनकी एक खिलाफ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफा से बहुत हद तक मुशाबहत रखते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो कुवैफा में आए, तो यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? यानी इशारा था उनका हजरत सईद की तरफ के गवर्नर कैसा है। उन्होंने इसकी शिकायत में जुबान खोली और इनके तर्ज अमल के बारे में चार बातें कही जो एक दूसरी से बढ़ चढ़ कर थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने गवर्नर और शिकायत करने वालों को एक साथ तलब किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह सईद के बारे में मेरे गुमान को छूटा ना होने देना, कि मेरा गुमान उनके बारे में बहुत अच्छा है। अब लोग इन पर चार शिकायतें लेके आ गए हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि ये बातें सच हों जो लोग इनके बारे में कहने वाले हैं। मुझे उस पर बहुत एतमाद था। जब ये लोग और इनका गवर्नर सुबह के वक्त मेरे पास आए, तो मैंने दरियाफ्त किया, यानी मैंने पूछा, क्या तुम्हें अपने गवर्नर से कोई गिला है? उन्होंने बताया कि हाँ। क्या पहला शिकवा क्या था? कि ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर मैंने पूछा कि सईद तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? सईद रजी अल्लाह अन्हु चंद लम्हे खामोश रहे। फिर फरमाया कि मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नापसंद करता था, लेकिन अब इसके बगैर कोई चारा ही नहीं कि मैं हकीकत साफ साफ खोलकर बयान करूं। तो हकीकत यह है कि मेरे घर में मेरे पास कोई खादिम नहीं, कोई सर्वेंट नहीं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, घर वालों के लिए आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर तक इंतजार करता हूँ ताकि आटे में खमीर पैदा हो, फिर इसके बाद रोटी पकाता हूँ, फिर वजू करके लोगों की खिदमत के लिए घर से निकल खड़ा होता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें इनके खिलाफ और क्या शिकायत है। उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त किसी की नहीं सुनते, यानी रात के वक्त जब कोई शिकायत पेश करता है या इनसे कोई मदद तलब करता है तो ये मदद नहीं करते। मैंने कहा, सईद रदी अल्लाहु अन्हो, इस एतराज का तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस बात को भी कभी जाहिर ना करता, मगर किस्सा यह है कि मैंने दिन इनके लिए वक्फ कर रखा है, यानी मैंने दिन तो अपने हुकूमत के कामों के लिए डिवोट कर दिया और रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए, कि रात को मैं इबादत में मसरूफ होता हूँ। मैंने पूछा, आपको इनके खिलाफ और क्या शिकायत है? वो बोले, महीने में एक दिन गफलत से काम लेते हैं। मैंने पूछा कि सईद, ये क्यों? सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना तो कोई खादिम है और ना इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कपड़ों का कोई जोड़ा है, और जो इस वक्त कपड़े मैंने पहन रखे हैं, महीने में एक मर्तबा धोता हूँ, फिर मुंतजिर रहता हूँ कि ये खुश्क हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो मैं इन्हीं को पहनकर दिन के आखिरी हिस्से में इनका सामना करता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर मैंने दरियाफ्त किया, कोई और शिकायत? उन्होंने कहा, मजलिस में बैठे बैठे कभी इन पर गशी तारी हो जाती है और यूं मालूम होता है कि अहले मजलिस से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने पूछा कि सईद रदी अल्लाहु अन्हो, ये क्या बात है? सईद रदी अल्लाहु अन्हो ने कहा कि मैंने हजरत खुबैब बिन अदी की शहादत का मंजर अपनी आंख से देखा था। मैं उस वक्त मुशरिक था। मैंने देखा कि कुरैश उनकी बोटियां काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुझे ये बात पसंद है कि तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हुबैब जवाब में कहते हैं, खुदा की कसम, मैं हरगिज पसंद नहीं करता कि मैं तो अपने घर वालों में इत्मीनान से रहूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक कांटा भी चुभने पाए। जब भी वो दिन मुझे याद आता है, सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने उस दिन इनकी मदद क्यों ना की। डरता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेरा ये जुर्म मुआफ ना करे। इसके बाद मुझ पर गशी तारी हो जाती है। ये सुना तो उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने सईद के बारे में मेरे हुस्न जन को गलत साबित नहीं किया। इसके बाद आपने 1,000 दीनार भेजे ताकि इनसे अपनी जरूरियात पूरी कर लें। जब ये दीनार सईद बिन आमिर की बीवी ने देखे तो कह उठी कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें आपकी खिदमत से बेनियाजी बख्शी। हमारे लिए, यानी आपकी खिदमत से बेनियाजी का मतलब ये कि पैसे आ गए हैं, अब हम एक गुलाम ले लेंगे और काम वो करेगा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए जरूरत की कुछ चीजें खरीद लीजिए और घर के कामकाज के लिए एक खादिम रख लीजिए। इस पर आपने बीवी से फरमाया, मैं तुझे वो चीज ना दूं जो इससे भी बेहतर हो। बीवी ने कहा, भला वो क्या? फरमाया, ये दीनार हम उसी को लौटा दें जो हमारे पास लाया है। हम इन दीनारों से कहीं ज्यादा उसके मुख्ताज हैं। बीवी ने कहा, वो कौन? फरमाया, क्यों ना हम अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दे दें। बीवी ने अर्ज की, आपने दुरुस्त फरमाया, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। आपने इसी मजलिस में दीनारों को मुख्तलिफ थैलियों में रखा और अपने अहले खाना में से एक शख्स को हुक्म दिया, जाओ फलां की बीवी, फलां के यतीम बच्चों और फलां खानदान के मसाकीन और फलां कबीले के महरूमों में तकसीम कराओ। अल्लाह ताला ने सईद बिन आमिर को सनद रोजा से नवाजा, यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया। आप उन लोगों में से थे जो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते थे, खुद चाहे घाटे में रहें। रदी अल्लाहु अन्हो। अल्लाह ताला इन लोगों से राजी हो जाए, और हो गया, और ये अल्लाह से राजी हो गए। लेकिन हकीकत यही है कि जब इंसान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो फिर अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। इस हिस्से का नाम जो आखिरी आपके रूप है यानी आप जहां से लिख रहे हैं, तो इसका उन्वान क्या होगा? तारीख सास लोग, ये लोग होते हैं जो तारीख बनाते हैं। हम कौन है? खुद सास, हम खुद को बना रहे हैं, इन लोगों ने तारीख बनाई। ये थे मुसलमानों को आला रुफ्फतें देने वाले, और इसी वजह से मुसलमान बुलंद थे जब तक ऐसे हुक्मरान थे, और ऐसे ही लोगों की जरूरत है आज भी। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आज भी ऐसे ही हुक्मरान हमें मिल जाएं। लेकिन याद रखिए, ऐसे हुक्मरान आराम से नहीं मिलते। ये कब मिलते हैं? जब हम अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे होंगे। पूरे वाक्य से जो बात मुझे समझ में आई वो यही आई कि आज ऐसी कहानियों को आम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें, और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस किताब को शुरू करके कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस लम्हे में हम आने वाली नस्ल की एक ऐसी किरदार साजी करने की कोशिश की तरफ चल पड़े कि अगर हर वीक इस एक एक सहाबी की बात पढ़ते रहे तो उम्मीद है ना कि ये बातें माओं को भी पता चलेंगी और बच्चों को भी पता चलेंगी। मैं आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, जो आपने यहाँ वक्त लगाया, जो मोहब्बत से सुना सीखा, अल्लाह ताला इसकी बरकत आप अपनी नस्लों में देखें, अपने बच्चों में देखें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।